शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे पैगंबर, सच्चे सच्चे मैसेंजर। मनुष्य धर्म पिताओं को पैगंबर समझते हैं, वो भगवान का पैगाम लाए हैं ऐसे समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति तो देते नहीं है। लेकिन धर्म स्थापना ही उनका एक मकसद होता है। फिर वो भी बाबा कहते हैं, अपने धर्म की पालना करने के लिए जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ये बहुत बड़ा गुह्यराज है। तो अगर तुम मैसेंजर हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सबको बाप का पैगाम देना है कि अब पावन बनकर घर चलना है। ये मैसेज धर्म पिता ही नहीं दे सकते, क्योंकि उनके धर्म की आत्मा ही तो अभी आई नहीं है, वही सबसे पहले आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम ही ये पैगाम भगवान का सबको देते हो। पर तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि सब आत्माएं तो सतयुग में नहीं आएगी। तो आज बाबा ने परख शक्ति दी है, कैसे आप परखो कि कौन सी आत्माएं कब आती है, कौन सतयुग में आते हैं, कौन त्रेता में, कौन द्वापर में, कौन कलयुग में, हम परख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास नब्ज है, जैसे वैद होता है, नब्ज देख करके दवाई देता है। तो वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसी अनुसार उनको बाबा का ज्ञान देना है। तो कैसे परखो, वो आज बाबा ने बताया है। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य, सारी मुरली जैसे सेवा पर ही है। आज 4/3/2025 है। मीठे बच्चे, पहली परख बाबा ने क्या दी है, वो हेडिंग में ही है। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, जैसे द्वापर युग शुरू हुआ और उन्होंने भक्ति शुरू की है, 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। और जो रुचि से नहीं सुनेंगे, इशारे से नहीं समझेंगे, माना उन्होंने भक्ति कम की है, अथवा बाद में आए हैं, 84 जन्म पूरे नहीं लिए हैं। आज बाबा ने वो परख शक्ति दी है। तो मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वे तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, सतयुग में आने वाली आत्मा है या पीछे आने वाली आत्मा, उसकी परख क्या है? उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, समझ में आ जाएगी और उसको उनको अच्छा लगेगा सुनना भी। उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वो मूझेंगे नहीं और साफ सीधा कहेंगे, हाँ ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, ये तो बहुत समझ की बात है, तो बिल्कुल राइट है। तो वो मूझेंगे नहीं, जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए, यहाँ भी हम सब देवता बनने वाली आत्माएं हैं। याद करो आपका पहला दिन जब आप सेंटर पर आए और आपको ये ज्ञान सुनाया गया या एग्जीबिशन आपने देखी, तो उसमें जो अनुभव किया पहले दिन ही, तो जरूर अगर वो अनुभव आपको बहुत अच्छा रहा तो जरूर कहेंगे कि हाँ 84 जन्म लेने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वो मुझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए, ये सार है आज की मुरली का भी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझ गए रूहानी बाप है निराकार। इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं हम आत्मा भी निराकार है, इस शरीर से सुनती है। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना, बाप दादा दोनों बाप है, दोनों इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है, ये दो बाप अच्छे हैं। तीसरे बाप से जो लौकिक बाप है उनसे ये दो बाप ऊंचे भी हैं और अच्छे हैं। इनसे फिर वो अच्छा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ये दो बाप है। ब्रह्मा बाबा बाप है लेकिन इस बाप से भी वो बाप अच्छा, तो इनसे फिर वो अच्छा, तो नंबर वार बाप हो गए। सबसे पहले ऊंचे से ऊंचा बाप है शिव बाबा, फिर उसके बाद है ब्रह्मा बाबा, फिर तीसरा है थर्ड में है फिर लौकिक बाप। तो बाबा कहते हैं इनसे फिर वो अच्छा नंबर वार है ना, तो पिताई भी नंबर वार है। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। ब्राह्मण बने तो लौकिक से तो बुद्धि हट जाती है, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से संबंध जुट जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, ये भी तुम जानते हो 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। तो बाबा कहते कैसे नब्ज से आप पर खो वो आत्मा कितने जन्म लेती होगी, ये भी तुम जानते हो 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेंगे लेते होंगे। ये कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है या 20 जन्म लेने वाला है। या तो हम सब क्या कहेंगे, सब 84 जन्म लेने वाले हैं ना, जो समझते हैं पूरे 84 जन्म लेंगे हाथ उठाओ, देखो सारे हाथ उठेंगे, कोई नहीं उठा रहे नहीं है क्या निश्चय। हाँ पक्का निश्चय है। तो ये कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है या 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे ये तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा, तुरंत समझ जाएंगे ज्ञान और पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे तो प्राप्ति भी अच्छी होगी उनकी, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। देखो ये कैसा राज है, ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझा रहे हैं। बोलो अभी कोई आए तो उनको क्या बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, क्या बताओ कि तुम देवी देवताओं को मानते हो, पहले ये पूछो। इसलिए बाबा कहते थे पहले फॉर्म भरवाओ, आप किसको मानते हो, ये भी एक प्रश्न है उस फॉर्म में, आप किसको मानते हो। फिर लास्ट का प्रश्न है आप यहाँ किस लक्ष्य से आए हो, तो किसको मानते हो और तो कोई कहेगा मैं गणेश को मानता हूँ, मैं हनुमान को मानता हूँ, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, तो उस अनुसार समझाना है। फिर किस लक्ष्य से आए हो वो लिखता है क्या लक्ष्य है, तो उस अनुसार समझाना है। तो बाबा कहते हैं ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों को समझाते हैं, तो बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी वो जड़ समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और रुचि से सुनने लग पड़ेगा, इंटरेस्ट लेगा वो, समझो ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा आई है, इसने बहुत भक्ति की है, ये शुरू से ज्ञान में माना ये चलना शुरू करेगा और फिर जल्दी सतयुग में आएगा। तो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो रुचि से सुनने लग पड़ेगा। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, आते हैं बस ऐसे वायरे की तरह देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं है, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए, नहीं बैठता बुद्धि में, ऐसे देख कर कैसे चले गए, तो उनके लिए समझना चाहिए ये अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे, हो सकता है फिर आएगा और फिर समझेगा। कोई का समझाने से झट कांध हिलेगा, इसको ज्ञान सुनाओ तो सर वो ऐसे ऐसे करेगा, उसको इंटरेस्ट और जागेगी और सुनना चाहेगा तो झट कांध हिलाएगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है ये कहेगा। अगर कहता है हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं, अच्छा 84 नहीं तो 82, देवता धर्म में तो आए होंगे, चलो 82 भी जन्म लिए होंगे तो भी देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जो बाद में आने वाली आत्मा ही है वो तो इतना नहीं सुनेगी, और न अगर सुनेगी भी तो न इतना समझेगी। जितना बहुत भक्ति की होगी वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो, अगर कम समझता है वो ज्ञान नहीं अच्छी तरह समझ रहा है तो समझो कि ये देरी से आने वाला है, भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा, ड्रामा रिपीट तो होता है ना, जिसका जो पार्ट है कल्प पहले बजा था इस कल्प में भी वही पार्ट बजेगा, तो ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है, कितनी उसने भक्ति की है उस पर मदार है, ज्ञान कितना सुनेगा, कितना वो जल्दी आया होगा या कितना देर से आया होगा। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। ये मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेगी, बहुत हो रही है, सब जगह खूब धूम मची हुई है, और अभी तो जो 12 ज्योतिर्लिंगम वो उसके भी बहुत बड़े मेले लगे हुए हैं, तो बाबा के बच्चे बहुत सेवा कर रहे हैं। ये मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेगी, जब सब भाषाओं में निकलेगी, एग्जीबिशन के चित्र सब भाषाओं में निकलेंगे, सारी दुनिया को समझाना है। क्यों सारी दुनिया को समझाना है? क्योंकि तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर अथवा मैसेंजर। वो धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, ना वो गुरु है, गुरु कहते हैं हाँ उनको प्रिसेप्टर कहते हैं, तो जैसे गुरु कहते हैं, परंतु वो कोई सदगति दाता थोड़े हैं। वो जब आते हैं उनकी संस्था तो नहीं है, वो धर्म की आत्माएं तो उस समय नहीं है, वो तो परम धाम में है, वो सबसे पहले आता है। फिर बाबा कहते हैं उनकी संस्था तो नहीं है तो सदगति किसकी करेंगे? गुरु वो जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। क्राइस्ट आदि को गुरु नहीं कहेंगे, वो सिर्फ धर्म स्थापक है, इतना ही उनका पार्ट है, धर्म स्थापक है। फिर वो आत्मा पुनर्जन्म लेकर उस धर्म की पालना करती है, तो वो सिर्फ धर्म स्थापक है, उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो उन्हों का है, किनका पोजीशन है, जो पहले पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में आते हैं, शुरू से जो आते हैं पाठ बजाने, उनका पोजीशन है, क्योंकि वही फिर उनकी पूजा भी होती है, फिर वही भगवान के बहुत नजदीक आते हैं, सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, तो उनका पोजीशन है सारे कल्प में। तो जो पहले पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में आते हैं, वो तो धर्म पिताएं तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। ये भगवान का ही काम है, ये धर्म पिता का काम नहीं है। पावन बना तो फिर, हाँ बाबा कहते हैं, पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते। हम पावन बन जाते हैं, बाबा पावन बनाने आते हैं, हम पावन बन गए, फिर पति दुनिया में हम थोड़ी रह सकते हैं। पवित्र आत्माएं चली जाएगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी है ना, वो लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। कहते हैं भगवान के लिए गॉड इज लिबरेटर, गॉड इज गाइड, लेकिन वो लिबरेट किससे करते हैं, गाइड कहाँ के लिए करते हैं, बाबा कहते हैं वो समझते नहीं। अर्थ समझ जाए तो उनको भी जान जाए, परमात्मा को भी जान जाए कि वो कौन है जो आके लिबरेट करते हैं और गाइड करते हैं। सत्युग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। गाइड, लिबरेटर, भगवान को कहना या मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये शब्द कहना, ये शब्द भी नहीं होंगे सतयुग में। ये भी ड्रामा में नूद है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सदगति तो एक को, सदगति को तो एक भी पा न सके, क्योंकि पार्ट बजाते रहते हैं और नीचे उतरते रहते हैं, तो बीच में किसी की भी सदगति नहीं होती। सदगति को एक भी पा न सके, अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा ही जाता है, इस संगम युग को कहा ही जाता है कल्याणकारी संगम युग। क्यों बाबा इसको कल्याणकारी संगम युग कहते हैं, क्योंकि और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। भले हाँ संगम है, सत्युग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापुर का भी है, द्वापुर कलयुग का भी है संगम, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है। सत्युग और त्रेता के संगम का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे एकदम पता भी नहीं चलेगा कि सत्युग से त्रेता आ गया, पता भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि महत्व तो है नहीं, तो एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आता है। पर हाँ, त्रेता द्वापुर का संगम युग है, वहाँ परिवर्तन आता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, प्रकृति उथल पुथल होती है, तो पता चलता है कि यहाँ अभी त्रेता खत्म हुआ, अभी द्वापुर आया है। तो बाबा कहते हैं सत्युग और त्रेता के संगम का तो कोई महत्व नहीं है। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता ऑटोमेटिक चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे तो चंद्रवंशी पास हो गए, उनके बाद क्या बने ये पता ही नहीं रहता। हाँ बात क्या, सत्युग त्रेता वालों को थोड़ी कुछ पता होगा कि हम कोई द्वापुर में ऐसे वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे, न वैश्यवंशी जो बने होंगे उनको पता होगा कि फिर हम शूद्रवंशी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं उनके बाद क्या बने ये पता ही नहीं रहता है, चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे। द्वापुर वालों को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, क्योंकि सब उथल पुथल हो जाता है, तो इतिहास सत्युग त्रेता का तो गुम ही हो जाता है। और तो वो नहीं समझ, चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, क्योंकि चित्र तो रह जाते हैं ना उनके, तो इसीलिए वो समझेंगे कि हाँ हमारे पूर्वज वो थे। वो महाराजा और वो राजा, वो बड़े धनवान थे, सत्युग में महाराजा और त्रेता में राजा, राजा राम, महाराजा राम नहीं कहते, श्री नारायण को तो महाराजा कहेंगे। तो वो सत्युग में महाराजा, त्रेता में राजा। तो बाबा कहते हैं हाँ, वो महाराजा वो राजा वो बड़े धनवान थे, इतना तो समझेंगे द्वापर में आकर, अभी भी समझते हैं भारत बहुत धनवान था। वो फिर भी नापास तो हुए ना, चंद्रवंशी नापास तो हुए ना, ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं, सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ, सुख के लिए नहीं कहेंगे, सुख के लिए नहीं कहेंगे, सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। आप शांति दो भगवान ये कहेंगे, ये भगवान हमको सुख दो ये नहीं कहेंगे। क्यों क्यों सुख दो नहीं कहेंगे? क्योंकि सुख के लिए शास्त्रों में बहुत निंदा कर दी है। क्या निंदा कर दी है? कि वहां भी तो असुर थे, वहां भी राक्षस थे, वहां भी ऐसे थे, तो कभी दुनिया में सुख था ही नहीं। इस दुनिया का सुख जो है वो कागविष्ठा के समान, इसलिए शांति चाहिए, तो इसीलिए सुख चाहिए ये कभी नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, सुख के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में, कि वहां सब सत्युग में भी असुर थे। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले, ये जरूर कहते हैं भगवान से। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं, क्योंकि सत्युग में दुख तो होता ही नहीं है, इसलिए तुमको दोनों मिलते हैं, सुख भी मिलता है शांति भी मिलती है। जहां शांति है वहां सुख है, जहां अशांति है वहां दुख है। सत्युग में सुख शांति है और यहां दुख और अशांति है, ये बाप बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। हाँ, क्यों माया आई, क्यों तुच्छ बुद्धि बने, क्यों माया ने तुच्छ बुद्धि बनाया, बाबा कहते प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरा पार्ट भी अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो किसके द्वारा? रावण द्वारा। अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, ये जो गायन है मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी वार, ये जो गायन है उनका अर्थ भी बाप ही आकर समझाते हैं। कैसे बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो इसका अर्थ जो है कि भगवान को देर नहीं लगी मनुष्य को देवता बनाने में, ये अर्थ भी बाप आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते, ये ग्रंथ के शब्द है ना, कि मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी वार, ये ग्रंथ पढ़ने वाले सुनाते हैं लेकिन वो भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं। जो अकाल तख्त पर बैठ करके ग्रंथ पढ़ते हैं वो भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने तुमको समझाया है कि आत्माएं अकाल मूर्त है, आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात आत्मा जिसको काल नहीं खाता वो आत्मा विराजमान है। सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु कभी नहीं होगी, वो है ही अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, कितना सरल तरीके से बाबा ये गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं, क्या गाते हैं? पतित पावन सीताराम। अब पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो कहां भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे, हाँ जाते ना, महात्मा गांधी का जब जन्म दिन होता है या पुण्यतिथि होती है तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर खास ये भजन गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते कहां भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे पतित पावन सीताराम। अब सच तो कभी छिप नहीं सकता, पतित पावन तो कौन कौन राम है कौन सीता है? बाबा कहते वो सच तो छिप नहीं सकता, तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहा है। कल्प पहले भी कहा था, पतित पावन बाप ने कल्प पहले भी कहा था क्या, कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के, तो आशिक बनकर उस माशूक को याद करो। वो आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो उस माशूक के, हर जन्म में उसको याद किया है, याद करते ही आए हो। क्या कहकर? हे प्रभु, ओ गॉड, हे भगवान, याद करते ही आए हो। देने वाला तो एक ही बाप है ना, तो बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है, सुख में तो कोई याद करता ही नहीं है, दुख में ही याद करते हैं। तो बाबा हाँ क्या याद करते हैं? बाबा आकर सदगति दो, ये दुख में ही याद करते हैं। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा, बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होती है, और क्या कहेंगे, गुरु की कृपा से बच्चा हुआ। अच्छा, बच्चा नहीं हुआ तो वो फिर गुरु को कहेंगे, गुरु जी बच्चा हुआ नहीं, तो फिर गुरु क्या कहेगा? ईश्वर की भावी नहीं होना होगा। ड्रामा को तो वो समझते ही नहीं है, ईश्वर की भावी कहेंगे, पर ये ड्रामा में है, उनको नहीं होना है, तो फिर गुरु भी कैसे देगा? तो वो कहेगा ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वो समझते ही नहीं है। अगर वो ड्रामा कहे, अगर ये गुरु लोग भी ड्रामा शब्द कहे कि ड्रामा में शायद नहीं होगा बच्चा होना, तो ड्रामा अगर वो कहे तो फिर सारा ड्रामा मालूम होना चाहिए उनको भी, कैसे ये ड्रामा फिरता है। इसलिए ड्रामा शब्द नहीं कहते, वो कहते गुरु की, ईश्वर की भावी। तुम तो ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में ही है। इस प्रकार जैसे बाबा ड्रामा का ज्ञान देते, न कोई शास्त्र में है, तो इसलिए कोई जानते ही नहीं है। ड्रामा माना ड्रामा, अब क्या अर्थ होगा इसका? ड्रामा माना ड्रामा, ड्रामा शब्द में कितने राज आ जाते हैं। ड्रामा माना उसकी कहानी चाहिए, फिर उसके कौन से पात्र है वो चाहिए, फिर कितना ड्यूरेशन है वो चाहिए, फिर वो रिपीट होना चाहिए, तब उसको ड्रामा कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ। ये चार युग बिल्कुल इक्वल है, समान समान है, बराबर बराबर है, इनकी आयु बिल्कुल इक्वल है। स्वास्तिका का भी महत्व है ना, खाता जो बनाते हैं, हाँ, अकाउंट बुक जब खोलते हैं, नया अकाउंट बुक खोलते हैं तो खाता बनाते हैं, तो खाता जो बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले खाता शुरू करने से पहले क्या करते हैं? स्वास्तिका बनाते हैं। तो स्वास्तिका श्री गणेश करते हैं, तो वो सबसे पहले स्वास्तिका निकालते हैं, तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। ये भी खाता है ना, अब तुम्हारा भी एक खाता है, अकाउंट्स तुम्हारे भी हैं, यहाँ भी घाटा नफा नुकसान फायदा ये सब इस खाते में है, ये भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है, घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है, बिल्कुल लॉस में आ गए हैं, देवाला मार दिया है ना, ऐसे कहेंगे ना। सब कमाई जो कुछ हमने की थी पिछले संगम पर, वो सब अभी जैसे खत्म हो गए। फिर बाबा कहते घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। ये हार जीत का खेल है, पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, किसके पास धन है और स्वास्थ्य भी है तो उसको सुख है। पैसा है पर हेल्थ नहीं है, धन बहुत है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर सुख नहीं है। तुमको दोनों हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूं, तो हैप्पीनेस भी है तो सुख भी है, स्वास्थ्य भी होगा तो धन भी होगा तो सुख भी होगा, सब कुछ होगा। तो तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूं तो हैप्पीनेस भी है, तो सत्युग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड कहते हैं, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। कहते एक है कि स्वर्ग पधारा तो खुशी होनी चाहिए ना, पर अंदर में दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो? दुखी भी होते हैं फिर उसकी आत्मा को नरक में बुलाते भी हैं, कुछ भी समझ नहीं है। और फिर कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना न सके, जैसे कल्प वृक्ष हम लोगों का है, बाबा कहते हैं ऐसे कल्प वृक्ष और कोई बना न सके। ये कोई इसने नहीं बनाया है, ये कल्प वृक्ष कोई ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनाया है, इसका कोई गुरु नहीं था। कई समझते ना, ये कल्प वृक्ष या चित्र जो भी है ये ब्रह्मा बाबा ने बनाए हैं, ये ज्ञान दे रहा है। तो भाई अच्छा, ये ज्ञान दे रहा है तो कोई इनका गुरु होगा, अच्छा गुरु से ज्ञान लिया तो एक ही शिष्य होगा क्या उस गुरु का? तो इस एक ही शिष्य तो नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा झाड़ और कोई बना न सके, ये कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था, ब्रह्मा बाबा का कोई गुरु नहीं था, अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया, इसलिए इसने ये सब चित्र बनाए हैं, कोई गुरु ने इनको सिखाया, इनको कोई गुरु ने सिखाया है। या फिर क्या कहते थे पहले, ऐसे कहते थे क्योंकि बाबा को देखते ही साक्षात्कार हो जाता था उनको, तो वो समझते थे कोई शक्ति है, इनमें कोई शक्ति है, इनमें कोई जादू है। शक्ति भी यूज करते थे पर जादू ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि इनको जो देखता उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता, जरूर कोई जादू होगा, जरूर कोई शक्ति है। तो बाबा कहते हैं तो कहते हैं मनुष्य समझते इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है, ईश्वर की शक्ति है इनके पास, वो प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? परमात्मा की शक्ति नहीं प्रवेश करती है, परमात्मा स्वयं प्रवेश करते हैं। बड़ा अंतर है दोनों में। परमात्मा प्रवेश करे और परमात्मा की शक्ति प्रवेश करे, शक्ति तो थोड़ी होगी ना, और परमात्मा माना फुल फोर्स, फुल फोर्स परमात्मा ज्ञान गुण सर्व शक्तियों का सागर, तो वो फुल है ना, तो ऐसा नहीं खाली थोड़ी शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते, बाप खुद बैठ बताते हैं मैंने कहा था, गीता उसके लिए प्रमाण है, मैंने कहा था, क्या कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मैं आता हूँ, ऐसे नहीं कि मेरी शक्ति थोड़ी सी आती है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। ये भी सुनता है, अटेंशन तो हमारे ऊपर है ना, अटेंशन है बच्चों पर ये भी बीच में सुन लेता है, दलाल तो बनता है ना। तो ये तो बाबा कहते हैं अटेंशन, हाँ बाप खुद कहते हैं मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ, और ये भी सुनते हैं अटेंशन तो हमारे ऊपर है, ब्रह्मा बाबा पर भी है परंतु बच्चों पर भी है, ये भी स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, ये अपने को और कुछ नहीं कहते, ये अपने को कोई गुरु वुरु नहीं कहते हैं, ब्रह्मा बाबा अपने को कुछ नहीं कहते। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, ब्रह्मा बाबा को ये भी पता नहीं चला कि शिव बाबा की प्रवेशता कब हुई कैसे हुई, बस ज्ञान मुख से निकलता गया, बाबा को खुद लगा ये कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है पता ही नहीं। तो बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम समझते जाते हो, बाप तुमको समझाते हैं, बीच में ये भी समझते जाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझते जाते हैं, ये भी पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका क्या पाठ है ये भी कोई नहीं जानते। तो बाप हर एक बात आपे ही समझाते हैं, तो प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते, आवश्यकता ही नहीं प्रश्न पूछने की, बाबा सब इतना क्लियर कट समझाते हैं। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर है देवताएं सूक्ष्म वतन में, उनको मिला कैसे सकते हैं? जो शिव शंकर को एक समझते हैं तो बाबा कहते हैं शिव तो परम धाम निवासी, शंकर सूक्ष्म वतन वासी, दोनों को मिला कैसे सकते हैं? या ब्रह्मा विष्णु शंकर इनका तो धाम ही अलग है, हाँ शिव बाबा से कैसे मिला सकते कि यही परमात्मा है, ये तो कह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं उनको मिला कैसे सकते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसीलिए कहा जाता है शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसीलिए दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? बाप दादा। इसीलिए मिलाकर कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव है और दादा ब्रह्मा है, बड़ा भाई है दादा, बड़ा भाई। तो दादा ब्रह्मा और बाप शिव। वर्षा तो शिव से मिलता है ना, इनके द्वारा ब्राह्मण हो गए कौन? ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने एडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बाप कहते हैं नंबर वन भक्त ये है, क्यों इनमें प्रवेश किया? कई कहते हैं ना क्यों इनमें प्रवेश किया, क्योंकि ये नंबर वन भक्त है, सबसे पहले भक्ति इस आत्मा ने शुरू की है, तो नंबर वन भक्त है ये। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं, सच सच में श्याम सुंदर तो बाबा कहते हैं यही आत्मा है। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है, पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो जैसे ये श्याम सुंदर बना, तुम बच्चे भी ऐसे ही बनते हो श्याम सुंदर, तुम भी ऐसे बनते हो। ये है आयरन एजेड वर्ल्ड और वो है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको भी पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वो 84 जन्म थोड़ी लेते होंगे, नेचुरली जो सतयुग आदि में आएंगे वही 84 जन्म लेंगे, जो बाद में आएंगे तो वो 84 जन्म तो नहीं लेंगे, वो 84 जन्म थोड़ी लेते होंगे, वो जरूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं? सीढ़ी में तो उनको ही दिखाएंगे ना, जो लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट जन्म में आते हैं, फिर उनके ही कैसे 84 जन्म है और अंत में ब्रह्मा सरस्वती, तो उनको ही दिखाएंगे। जो बाद में आने वाली आत्माएं उनको कैसे दिखाएंगे? तो उनको सीढ़ी में कैसे दिखा सकते हैं? बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे और सबसे कम जन्म कौन लेंगे, ये भी नॉलेज है। हम कई बार ये भी बात सुनाते हैं, जो सत्युग त्रेता में आने वाली होगी उसमें भी जो सत्युग आदि में आने वाली होगी वो झट समझेगी, त्रेता में आने वाली होगी थोड़े प्रश्न करती रहेगी, डाउटफुल वो थोड़ा संशय बुद्धि भी बढ़ती रहेगी, युद्ध अंदर चलती रहेगी। और जो द्वापर युग में आने वाली आत्माएं होंगी वो तो इस ज्ञान को समझेंगी नहीं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमको जीवन मुक्ति में जाना है, स्वर्ग में जाना है, वो कहेंगे हमको तो मोक्ष ही चाहिए, हमको तो मोक्ष ही चाहिए, हमको ये दुनिया में आना ही नहीं है। तो समझो वो द्वापर युग की आत्माएं। और जो कलयुग की आत्माएं हैं वो तो कहेंगे यही स्वर्ग है, हमको और क्या स्वर्ग चाहिए, यही स्वर्ग है, खाओ पियो मौज करो, यही तो स्वर्ग है, और कोई स्वर्ग है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो आत्माएं जो कलयुग अंत में आने वाली है परम धाम से, उन्होंने बहुत समय से नींद ही की है, शांति में ही रही है, इसीलिए अभी उनको ताम झाम आवाज ये सब नाच गाना तमाशा शराब जुआ यही चाहिए, क्योंकि वो अभी आई है आत्माएं, बहुत समय वो शांति में रही है, पर सत्यु की आत्माएं तो थक गई है, 84 जन्म लेते लेते तब कहेंगे हाँ बाबा अभी घर ले चलो, बाबा अभी नई दुनिया बनाओ, बाबा स्वर्ग को रचो, तो वो स्वर्ग चाहेंगे। तो देखो पता चल जाता है वो आत्मा कब आई है सृष्टि मंच पर। तो बाबा कहते हैं सबसे कम जन्म कौन लेंगे, अब ये है नॉलेज, बाप है नॉलेज फुल पतित पावन, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वो सब नेति नेति करते आए, भगवान का इतना ऊंचा ज्ञान वो तो समझे नहीं, तो क्या कह दिया नेति नेति, ईश्वर का अंत पाना असंभव, भगवान का अंत मिल ही नहीं सकता, इसलिए न अति न इति माना उसका अंत है ही नहीं। तो वो नेति नेति करते आए, अपनी आत्मा कोई नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, आत्मा क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है, जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है ये नजदीक वाला है, ये सत्यु के आदि में आने वाला है, जो अच्छी रीति समझता और समझाता है। बुद्धि में नहीं बैठता है इसका मतलब देरी से आने वाला होगा, सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबरवार है तो फिर समझने वाले भी नंबरवार है। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते हैं और कोई तो प्रजा में नौकर चाकर भी बनते हैं। बाकी हाँ पद में तो बहुत अंतर है, लेकिन एक चीज कॉमन क्या होगी वहां, बाकी हाँ इतना है कि सत्युग में कोई दुख नहीं होता है, ये कॉमन है, किसी को भी कुछ दुख नहीं होता है, चाहे वो राजा महाराजा हो या दास दासी हो या नौकर चाकर, उनको दुख नहीं होता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम बहिष्ठ, पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा, कहीं ऊपर है स्वर्ग तो ये समझते हैं, इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है, वो छत में दिखाया है स्वर्ग। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं और ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे पैसा रखेंगे, मंदिर में जाएंगे बस दर्शन करेंगे पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, तो और क्या चाहिए, बाप की बायोग्राफी जानी माना सब को जान लिया। बाप को जानने से ही तुम सब कुछ, तुमको सब कुछ समझ में आ जाता है तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, किस बात की खुशी होनी चाहिए, अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है किसको, आत्माओं के बाप को, आत्मा स्पिरिट, आत्मा को आत्माओं के बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वो ही सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो ये सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो, अगर कोई और धर्म वाले कहे कि सीढ़ी में हम लोग क्यों नहीं है, हाँ तो बाबा कहते आपका जो है वो धर्म वो सीढ़ी में नहीं है, क्योंकि 84 जन्म तो नहीं लेते हैं, आपका जो चित्र है वो चक्र और झाड़ में है। तो बाबा कहते हैं तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे, सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं जो शुरू में आते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, मुख्य बात है ही पतित से पावन बनने लिए बाप से बुद्धि योग लगाना, यही है सार सारा। कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हड्ड गुड एकदम टूट पड़ते हैं, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। अब 1 मंजिल से कोई गिरता है तो जो वो हड्डी वड्डी तो चलो एक टूटेगी, सब तो नहीं टूटेगी, पर 5 मंजिल से गिरा तो एकदम सब हड्डियां टूट जाती है, वो तो मर ही जाएगा। बुद्धि ही मलेच की हो जाएगी। अगर एकदम काम विकार से गिरे नीचे तो बुद्धि मलेच हो जाएगी। दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं, क्या नहीं निकलेगा। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अंत में बाबा ने सावधान कर दिया बच्चों को, खबरदार रहो। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, मालिक याद रहेगा ना, और सेवा जो उसकी उसको करनी है वो याद है, तो जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट, हम सब क्या है, वर्ल्ड सर्वेंट, सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय बाकी सब रस नीरस लगते हैं, सब रस नीरस, सिर्फ एक रस जो आत्मा को भाता है वो है एक बाप का रस। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहां भी आकर्षण नहीं जा सकता। यही एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। उसके लिए क्या करो, जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। ये गलत बात है तो वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, इसीलिए वायुमंडल में असत्यता की बात फैलाना ये भी तो पाप है। चलो असत्य बात पाप है तो असत्य बात फैलाना भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता है। भाई हमारे परिवार की बात है इसीलिए वो फैलाई नहीं जाती है बात। कान से सुना और दिल में छिपाया, यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। सत्यता की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। अच्छा हाँ, तो आप सभी ने ये नोटिस बोर्ड पर तो पढ़ ही लिया होगा कि आज सभी समर्पित भाई बहनों और ट्रायल वाले भाई बहनों को सुबह 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना है। शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10:30 बजे सभी समर्पित भाई बहनों और ट्रायल वाले भाई बहनों को जाना है, जहां घाटकों पर की आदरणीय नलिनी दीदी जी निमित्त भोग लगेगा और फिर सौगात भी दी जाएगी। कृपया समर्पित अपना स्मार्ट कार्ड और ट्रायल वाले अपना ट्रायल कार्ड अवश्य साथ में ले जाएं। ये विशेष सूचना है। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे।